نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير سبق نمبر 125 آیت نمبر 58 سے 87 سورة یوسف لیسن نمبر 125 آیت نمبر 58-87 سورة یوسف تیرہویں پارے کا یہ پہلا سبق ہے براہ راست آیتوں پہ جانے سے پہلے ہم تھوڑی سی بات آج کے سبق پہ کریں گے آج کا سبق ہمیں سب سے پہلی بات جو سکھاتا ہے وہ کیا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے ہر مشکل اپنے وقت پہ ختم ہو جاتی ہے جب اللہ کو کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو اس کے حالات اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں تقدیر اور تدبیر کا کیا تعلق ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے نظر بد کی کیا حقیقت ہے جب کوشش کے باوجود بھی تکلیف پہنچ جائے تو کیا رویہ ہونا چاہیے ہر علم والے پر ایک علم والا ہے اس سے کیا مراد ہے دکھ سکھ کے نام پر دوسروں کی برائی کرنے سے کیا نقصان ہے اس کو دیکھیں گے اور آخر میں پھر صبر جمیل بہت ہی خوبصورت سبق ہے تو ایک کہانی آپ دیکھیں گے کہ آیتوں کے ساتھ ساتھ ہی چلتی جائیں گی ظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت ساری آیتیں ہیں آج کے سبق میں لیکن جب آپ سنیں گے تو کہانی کی طرح آپ کو لگے گا اور کہانی میں بہت زیادہ بات بتانے کی نہیں ہوتی صرف اس کے اندر غور و فکر کرنا ہوتا ہے اور اس سے مورلز لینے ہوتے ہیں تو چلیے اب آیتوں کے ساتھ ساتھ چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہمارے لیے کیا نئی بات ہے تھوڑا سا سمجھ لیجیے ان آیات جو ہم پڑھنے والے ہیں اس سے یوسف علیہ السلام کی کہانی کا ایک نیا باب کھل رہا ہے جتنی باتیں ابھی گزری ہیں ان میں اور اب جو پڑھنے لگے ہیں تقریباً کم و بیش 10 سے 12 سال کا وقفہ بیچ میں بادشاہ کا خواب سچ ہوا قحط کے سال آئے یوسف علیہ السلام نے تعبیر کے ساتھ ساتھ جو تدبیر بتائی تھی اسی پہ عمل کیا اور نتیجہ کیا نکلا کہ جب قحط آیا جو کہ صرف مصر میں نہیں آیا تھا پورے اس خطے میں تھا جس کا شکار یوسف کے خاندان کا ملک فلسطین جو وہاں ایک چھوٹی سی بستی تھی کنعان نام کی اس پہ بھی اثر ہوا پوری دنیا میں ارد گرد جب قحط تھا تو انہوں نے تو اس وقت کو نہیں سمجھا لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے علیم ہونے کا ثبوت دیا اور اس وقت میں سامان کو جمع کرتے رہے نتیجہ کیا ہوا کہ جب پورے علاقے میں قحط تھا تو یوسف علیہ السلام کے توسط سے مصر میں نہ صرف یہ کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اناج موجود تھا بلکہ اچھے حکمران ہونے کی دلیل دیتے ہوئے انہوں نے اپنے ہمسایہ ملکوں کو بھی ایک آفر دی جس کو آپ کی زبان میں آج کوٹا کہہ سکتے ہیں یا راشن کہہ سکتے ہیں یوسف علیہ السلام نے قانون بنایا کہ باہر سے جو لوگ آئیں گے جتنے لوگ آئیں ہر بندے کو پر ہیڈ کے طور پر اتنا اناج دے دیا جائے گا جو ایک اونٹ پر چل جائے یوسف علیہ السلام کا یہ کردار بھی بڑا عجیب ہے عام طور پہ آج دنیا میں جہاں اکنامک ٹیررزم ہے چند بڑی قوتوں نے دنیا کے بڑے غریب ملکوں کے ریسورسز اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ان کی فصلیں اپنی مرضی سے نہیں اگتی ان کے مائنز اس سے وہ خود فائدہ نہیں اٹھا پاتے یوسف علیہ السلام نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ایک صورت تو کیا تھی کہ جب یوسف کے پاس مال زیادہ ہے اور ارد گرد میں خالی ہے تو دھمکیاں دیتے جنگ کی باتیں کرتے اور بڑی سخت کڑی شرطوں پہ ان سے قبضے لیتے دیتے یوسف علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ راشن بندی کا نظام متعارف کرایا کہتے ہیں کہ ایک خاندان کو ایک سال کے لیے صرف اس قدر غلہ دیا جاتا تھا جو ایک اونٹ پر آ جائے اور اس کی معمولی سی قیمت رکھی جاتی تھی نومینل سی پرائز تھی اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اتنی تھوڑی قیمت رکھی تھی کہ جس کا مقصد بھی صرف ڈسپلن تھا یوسف علیہ السلام اگر قیمت نہ رکھتے तो फिर तो वो भी ले जाता जिसको ज़रूरत थी, और वो भी ले जाता जिसको ज़रूरत नहीं, और चीज़ के ज़ाया होने का ख़तरा था। ये भी एक डिसिप्लिन का बड़ा खूबसूरत रूल है कि चाहे एक पैनी किसी चीज़ की कीमत रखी जाए, ज़रूर रखनी चाहिए ताकि चीज़ मिसयूज़ ना हो। ये खबर कनान पहुंच गई, फलस्तीन में कहत था। उनको ये पता था कि मिस्र में कोई एक ऐसा वजीर है कि जो आने वालों को खाली हाथ नहीं रखता। कहत का असर यूसुफ के भाइयों पर भी पड़ा, उन्होंने भी वही किया जो उस दौर में लोग कर रहे थे। उनको ये तो नहीं पता था कि आगे हमारा सामना किससे होना है, लेकिन बिन यामीन को छोड़कर, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको साथ जाने नहीं दिया, बाकी 10 भाई यूसुफ के मुल्क में आते हैं। क्या होता है इस वक्त, आइए जरा देखते हैं। बिल्कुल यकीन करें, ऐसे ही लगेगा कि जैसे किसी फिल्म या ड्रामे का कोई सीन है और पिक्चराइजेशन हो रही है, लेकिन अल्लाह ताला अपने काम कैसे लेके करता है। आयत नंबर 58, वजा इख्वत यूसुफ, और आए यूसुफ के भाई। क्या वो याकूब के बेटे नहीं थे? क्या वो उनकी कोई अपनी पहचान नहीं थी? सब कुछ था। यहाँ इख्वत यूसुफ कहकर अल्लाह ने हम सबको पीछे सोचने पे माइल कर दिया कि वो भाई जिन्होंने यूसुफ के साथ क्या किया, नहन उस्बा का दावा करने वाले, आज यूसुफ के सामने भिखारी बन के आ गए। फदखलू अलैहि, और आपके सामने पेश हुए। फिर क्या हुआ, फरफहुम, तो आपने तो इनको पहचान लिया। किसने? अराफा। किसने पहचाना? यूसुफ ने। किसको पहचाना? हम उनको। लेकिन वहुम लहू मुनकिरून, वो आपको नहीं पहचान सके, आप उनके लिए अजनबी थे। ये क्यों हुआ? पहली बात, मिन तावील अहादीस, यानी सवाल लिखिए कि यूसुफ तो भाइयों को पहचान गए लेकिन भाई उनको ना पहचान सके। तो पहली बात, यूसुफ को अल्लाह ने हिकमत दी थी, गैर मामूली हाफसा दिया। और हकीकत है कि अल्लाह के रास्ते में अपने आप को लगाने वाले अपनी सारी खूबियों को, स्किल्स को बढ़ा लेते हैं, अल्लाह बरकत दे देता है। दूसरी बात यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो कुछ ना कुछ खबर थी कि ये काफिला किधर से आया, कनान का आया, फिर लफ्ज़ 12 आया, और कोई बच्चे थोड़ी थे जब उनसे जुदा हुए थे, तो आखिर टीनेजर नहीं तो कम अज़ कम लड़कपन तो था ही ना। यूसुफ एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले से, जबकि उनके भाई क्यों नहीं पहचाने? अब ये नुक्ता है। तो इसकी वजह क्या है कि भाई तो सोच भी नहीं सकते थे कि वो यूसुफ जिसको हमने कुएं में फेंका था आज मिस्र का बादशाह बना बैठा है। हकीकत ये है कि दुख देने वाले और बेकदरी करने वाले कभी नहीं पहचानते कि जिसकी हम ना कदरी कर रहे हैं, अल्लाह उसकी कैसी कदर करेगा। अल्लाह ने यूसुफ को कुएं से निकालकर तख्त पर बिठाया। इसको हमारे यहाँ कहते हैं कि फर्श से अर्श पर, वो तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जहां मजे की बात देखिए कि यूसुफ ने भाइयों को पहचान लिया लेकिन बोले नहीं, खामोश रहे। क्यों? इसलिए कि उनको अपने जज्बात पे काबू था। ये बात एक लिख लीजिए, मैंने पिछले सबक में जो आपको नफ्स की बातें बताई थी ना, शहवात और शुबहात और शिर्क, इसके साथ शैतान का एक बहुत बड़ा हमला जो बहुत ज्यादा कॉमन है, वो जज्बात के नाम पे इमोशनल होना। इमोशनल लोगों से जितना बच सकें बचें। मैं आपको एक छोटा सा असूल जिंदगी का बता रही हूँ, किसी रंग रूप में अगर आप इमोशनल बंदे से अपने आप को थोड़ा सा एक किनारे पे कर लेना, तो कल आप बहुत बड़े बड़े खतरों से बच जाएंगे। देखिए, एक लफ्ज़ होता है जज्बात, लिखिए, ये तो ज़िंदगी है। बच्चा दुनिया में आ नहीं सकता अगर जज्बात ना हो माँ और बाप के। ये जज्बात की हैजानी होती है कि एक बच्चे की सूरत में दुनिया में आ जाती है। जज्बात ज़िंदगी है लेकिन जज्बातियत मौत है। दुनिया में बहुत सारे लोग अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं क्योंकि वो अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सकते। कोई बात सुनी तो हाइपर हो गए, कोई इल्ज़ाम लगा तो आपे से बाहर हो गए, کوئی اپنے خلاف بات سنی تو تصدیق کے بغیر شروع ہو گئے، اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایسے وقتوں میں ان کا حال کیا ہوتا ہے، وہ شروع ہو جاتے ہیں دل کی باتیں بتانے۔ خود سے پوچھئے، یوسف کی جگہ میں ہوتی اور میرے سامنے میرے وہ مخالف ہوتے جنہوں نے چلیں قتل کی تو نہیں لیکن مجھے لٹ ڈاؤن کرنے کی تو کوشش کی، تو میں کیا کرتی؟ کیا میں چپ رہتی؟ یہ ہے آپ کا اصل کردار۔ یہ جو آپ اس وقت مجھے اور میں آپ کو دکھ رہی ہوں نا، یہ میرا اور آپ کا اصلی روپ کوئی نہیں ہے۔ آپ کو بھی پتہ میں کون ہوں، مجھے بھی پتہ آپ کون ہیں۔ یہ جو ہم کھانے پہ، دعوتوں پہ ملتے ہیں، شادیوں پہ ملتے ہیں، یہ بھی میرا اصل روپ نہیں ہوتا، یہ تو فارمیلٹیز ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تم مروت کو بھی اخلاق سمجھتے ہو، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ یہ ہمارے جس ایٹیکیٹس ہوتے ہیں۔ اصل کسی کا کیا ہے، اس کو جذباتی ہے جان کے موقع پہ دیکھ لو۔ زنا کب ہوتا ہے؟ جذبات کے نام پہ ہوتا ہے۔ قتل کیوں ہو جاتا ہے لوگوں سے، کبھی سوچا؟ جذبات کے نام پہ۔ اور لوگ دوستیوں کو دشمنیوں میں بدل لیتے ہیں۔ طلاق کیوں ہوتی ہے؟ جذبات کے نام پہ۔ کوئی پیار سے تو کبھی طلاق کا لفظ نہیں بولتا۔ جذباتیت بہت زیادہ نقصان دیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام صدیق بھی تھے، حلیم بھی تھے، محسن بھی تھے، لہٰذا ان کو جذبات پہ قابو تھا، چپ رہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ بدل کر تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ یوسف دیکھنا چاہتے تھے کہ میں تو نہیں بتاتا اب ہوتا کیا۔ بہت بڑا سبق ہے، یہ چھوٹی بات نہیں۔ اس پہ اس سے بہت زیادہ بات پچھلے سال میں نے کی تھی الحمدللہ، اگر آپ سننا چاہیں تو سن لیں، کہ جذباتیت پہ قابو پانے والے ہی بادشاہ ہوتے ہیں۔ ایک جملہ کہیں پڑھا تھا کہ جو خود پہ قابو نہیں پا سکتا وہ دوسروں کو قابو میں کیسے لائے گا۔ بعض اوقات ہم اپنے چھوٹوں کو اور اپنے بچوں کو وہی بات سکھا رہے ہوتے ہیں جو ہم خود نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ چیخ کے کہتے ہیں چپ کرو، آہستہ بولو۔ اب میں تو اتنا اونچی بول نہیں پاتی، بولوں گی تو گلا بند ہو جائے گا۔ ہم وہی ہائپرنیس دکھا رہے ہوتے ہیں جو ہم نہیں چاہتے ہمارے بچوں میں آئے، تو اپنے جذبات پہ قابو پائے، تحمل۔ اور دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ بھائی بھوکے تھے، ضرورت مند تھے۔ اگر ایسے وقت میں ان کو یوسف یہ خبر سناتے تو ہو سکتا ہے بیچاروں کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا، گلٹ ہوتا۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی بھوکا ہو تو نہ تو اس کو غم کی خبر سنائے، نہ خوشی کی سنائے، نہ غصے کے وقت۔ اور جب غصے کے وقت اگلے کو آپ تبلیغ کر رہے ہوں تو ساری آپ کے اوپر ہی پڑے گی۔ پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یوسف نے حالات کی نوعیت کو سمجھا، حالات کی نزاکت کو پہچانا، اپنی ذمہ داری لی۔ یہاں سے ذمہ داران کو سبق ملتا ہے، خاص حالات میں خود پر نظر رکھیں کہ اس وقت مجھے کیا بیہیو کرنا ہے۔ چھوٹوں کو تو نہیں پتا ہوتا لیکن خود پہ قابو رکھیں۔ آپ دیکھیے، مینجمنٹ کا ایک بہت گہرا اصول ہے، انگلش میں کہتے ہیں کہ اٹس بیٹر ٹو لوز این آرگیومنٹ ٹو لوز اے پرسن۔ ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے اختلاف رائے، یعنی کسی لڑائی میں آپ کا ہار جانا بہتر ہے، یہ چھوٹی شکست ہے اس کی نسبت کہ آپ کسی بندے کو ہار جائیں۔ وقتی طور پہ آپ غالب آ گئے، جذبات میں آ گئے، اگلے کو سنا دی، کھری کھری سنا دی، جو بھی آپ سوچیں کہ لینگویج ہم یوز کرتے ہیں اپنے ارد گرد، ہم کہتے ہیں میں نے چپ کرا دیا، وہ چپ ہو گیا، وہ کھسیانہ ہو گیا، وہ بھیگی بلی بن گیا۔ نہیں، اس نے اسی وقت دل میں سوچ لیا تھا کہ آج آپ کا اس کے ساتھ آخری دن ہے اور آج کے بعد آپ کی اس کی دوستی ختم۔ اور یہ صرف دوستوں میں نہیں ہوتا، سگے بھائی بہنوں میں بھی ہوتا ہے۔ وہ وقت جس وقت ہم نے اگلے کو کانکر کرنا ہوتا ہے، سمجھیے گا، ایسے وقت جب کوئی غلطی کرے اور آپ اچھا بیہیو کر کے اس کو کانکر کر لیں، اس وقت ہم اپنے دلائل منوا کے کوئی کارنامہ نہیں انجام دیتے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی سیرت سے ملتا ہے۔ کیا کہ آئیے ذرا اور بھی باتیں دیکھیے گا کہ صرف چپ ہی نہیں رہے، احسان کی حد کر دی۔ ہم ہوتے تو پولیس کو کال کرتے، 911 کال کیجئے، پکڑ لو، اتنے سال پرانے قاتل آ گئے ہیں، قتل کا مقدمہ چلتا۔ پھر دونوں طرف بدنامیاں ہوتی، اور ان بدنام کون ہوتا؟ ایک ہی باپ، ایک ہی باپ کی اولادیں ادھر بھی لڑ رہی ہیں، ادھر بھی لڑ رہی ہیں، اور باپ کی قبروں میں پتہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ یوسف ایسے بیوقوف نہیں تھے، خاموش، سمجھ گئے کہ چلو ٹھیک ہے، اب حالات بن رہے ہیں۔ आयत 59 वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, फिर आपने उनका सामान तैयार करवाया, खुद करवाया। ये भी नोट कीजिए, अगर दिल में ग्रज रखा होता और आज तक उनके साथ जो मामला था वो भूले ही ना होते, और हम भूल के भी लोगों को माफ कोई नहीं करते, कह देते हैं करते कोई नहीं है, लेकिन यूसुफ का हाल देखिए, खुद अपने हाथ से सामान पैक करवाया। ये जो लफ्ज़ है ना जहाज़ और जहाज, ये जहाज़ा से है, जीम हाज़ा, इसी से लफ्ज़ जहाज भी है। वो सामान जो मुसाफिर सफर पर रवाना होते वक्त तैयार करे, यानी कहीं भी जाते हैं तो सामान्य सफर कह लीजिए। इसी से दो बड़े मारूफ लफ्ज़ हैं हमारे कल्चर में, बोलिए जिसको समझ आ गए, जहेज और जहाज तो हो गया, तजहीज, मुर्दे की तजहीज हो गई। मैयत को दफन करने से पहले जो सामान जमा होता है ना उसको तजहीज कहते हैं, कहते हैं ना तजहीज व तकफीन। जहेज के दुल्हन को रुख्सत करते वक्त माँ बाप जो सामान देते हैं, अब यहां से आप देख लीजिए कि जहेज और तजहीज दोनों में क्या रब्त है। यहां इससे मुराद वो गल्ला जो यूसुफ अलैहिस्सलाम काफले वालों को दे रहे थे, खुद अपने हाथों से सामान तैयार किया। काला तूनी, फिर कहने लगे ले आना मेरे पास, बिअखिल लकुम मिन अबीकुम, अपने उस भाई को जो तुम्हारे बाप की तरफ से तुम्हारा भाई है। कहते हैं कि बातों में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे सारी बात सुन ली, पता तो था ना एक भाई है, तो वो दिखा नहीं, कहा वो किधर है, एक और भी भाई, कहा हाँ एक है बस। बस कहते हैं कि उन्होंने भाइयों ने मुतालबा किया कि हमें 12 लोगों का नहीं 13 लोगों का राशन दीजिए। कहा भाई क्यों, कहा वो एक भाई और भी है, उसके बच्चे बीवी भी हैं घर में, तो हम उसको अपने बाप की खिदमत के लिए छोड़ आए हैं, तो उसका हिस्सा हमें दे दें। साथ ही थोड़ी सी कहानी खुल गई, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया, कहने लगे कि देखो मैं असूल नहीं तोड़ूंगा, 10 का है राशन तो 10 को मिलेगा, हाँ तुम लेना चाहते हो तो अगली दफ़ा तुम ले आओ। बल्कि बाज कहते हैं कि उन्होंने एक शर्त पर एक ऊंट का सामान ज़्यादा दे भी दिया, कि शर्त यह है कि अगली दफ़ा जब आओगे तो अपने उस भाई को लेके आओ, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुमने झूठ नहीं बोला, गलत बयानी नहीं की, मेरे से ऐसे ज़्यादा गल्ला तो नहीं ले लिया। कहा ठीक है। अब क्या हुआ, अला तरौना अन्नी उफिल कैला, क्या तुम देखते नहीं हो कि मैं पैमाना पूरा भर कर देता हूँ, वाना खैरुल मंजिलीन, और मैं बेहतरीन मेहमान नवाजी करने वाला हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम की शदीद ख्वाहिश दिख रही है इस जुमले में कि उनका भाई बिन्यामीन भी उनके पास आए, इसलिए अपनी तारीफ करते हुए दिखते हैं कि देखो मेरे पास ना आने की वजह क्या है, मैं देखो तुम्हें नाप पूरा देता हूँ। औफी वफा के लफ्ज है, ऊफू वफा, और कई कहते हैं नाप को, और नापी हुई चीज़ को भी कहते हैं। मुंजिलीन नजल से, नून जालाम उतरना, यहाँ इससे मुराद है वो खाना जो मेहमान को आते ही खिलाया जाए। देखिए अरबी जबान में मेहमान नवाजी के लिए मुख्तलिफ लफ्ज़ है ना, पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, दईफ़ कहते हैं मेहमान को, लेकिन वो खाना जो फर्स्ट खाना होता है, जो बहुत पुरतकल्लुफ होता है अमूमन, उसको नुज़ुल कहते हैं। जन्नत के लिए भी लफ्ज़ आता है नुज़ुल मिन गफूर रहीम, सूरह हामिम सजदा में हम पढ़ेंगे कि जो लोग इस्तकामत रखते हैं अल्लाह ताला उनकी मेहमानी जन्नत में करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि देखो मैं बहुत अच्छा हूँ, मुहसिन भी हूँ, पैमाना भी भर के देता हूँ, हक से ज़्यादा देता हूँ, लिहाजा तुम क्या करना। आयत 60, फ़इल्लम तातूनी बिही, फिर अगर तुम उसको मेरे पास नहीं लाओगे, फला कैला लकुम इंदी, तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं है, वला तक़रबूनी, और तुम मेरे करीब भी ना भटकना। ये सख्ती का अंदाज क्यों कर रहे हैं, ताकि भाई दूसरे भाई को लेकर आए। ठीक है, भाई क्या कहने लगे, कालू, वो सब बोले, सनुराविदु अन्हु अबाहु, हम इसके बारे में इसके बाप को आमादा करने की कोशिश करेंगे। किसका बाप कह रहे हैं, ये फर्क होता है लैंग्वेज का, अदब, जो सैटरडे को आ रहे हैं उनको पता चल रहा है अदब क्या है। यूसुफ ने क्या कहा था, या बती इन्नी राइतु, और बेटे क्या कह रहे हैं, अबाहु, उसका बाप, इनका नहीं था। ये देखिए ये फर्क होता है, जो लोग मोहब्बतें लेते हैं, जो ट्रस्ट लेते हैं, उनके बोलने के अंदाज में बहुत खूबसूरती होती है। इनके जुमले में एक तो लफ्ज़ है नुराविदु, ये लफ्ज़ पीछे कहाँ आया है, नेगेटिव लफ्ज़ों में आया है, मैं थी जो इसको, तुराविदु अन्नफ्सी, मैं अपने नफ्स से बहकाती थी, मतलब इसको आप कह लीजिए कि नेगेटिव लफ्ज़ों में आया है। तो यहां क्या बातों में उतारना, जिसको आप कहते हैं ना कि मैं घी निकालना चाहूंगा सीधी से नहीं तो टेढ़ी उंगलियों से, वह इन्ना लफाइलून, और हम ये जरूर करके रहेंगे। यानी यूसुफ को यकीन दिला रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उम्मीद तो कम है, लेकिन ये काम हो जाएगा। ठीक है, अब काफिला जाने को तैयार है। वकाल अली फित्रियानी ही, यूसुफ ने अपने जवानों से कहा। फित्रियन जो लफ्ज है ना, फतन, पीछे पड़े आपने, फतयान वही लफ्ज है, फतन जैसे हुदन होता है ना, इसी तरह फतन की जमा फित्रियान है। फतह कहते हैं जवान होना, जवानी की इब्तदा से लेकर भरपूर जवानी तक, यही जैसे 8-9 साल की उम्र से लेकर फिर भरपूर 20 साल की उम्र या उसे इर्द गिर्द की चीज है, इसी की मोनिस फतात होती है। गोलतार डालते हैं इन पे, खिदमतगार लॉन्ड्री के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इधर जवान मुराद है। यहाँ से एक छोटा सा साइड इश्यू मिलता है कि खिदमतगार जवान लेने चाहिए, क्योंकि जवान लोग को में एनर्जी ज्यादा होती है, और ऐसा खिदमतगार जो साथी भी हो खिदमत के लिए और दोस्त भी हो और उम्र के एतबार से भी जवान हो। यही लफ्ज आगे सूरह कहफ में हम यूश बिन नून के लिए पढ़ेंगे, जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को कंपनी दी थी सफर में। तो बहरहाल इन्होंने अपने जवानों से कहा, इजअलू बिदुआतहुम फी रिहालिहिम, इनकी पूंजी भी वापस इनके कुजाबों में रख दो। यानी भाइयों को अनाज भी दे दिया, जो प्रोटोकॉल था जो रूल था वो भी पूरा किया, पैसे लिए, ये नहीं कि पैसे नहीं लेने, ये तो गवर्नमेंट के साथ जुल्म हो जाता ना, ये तो सिस्टम बिगड़ जाता, ये तो एक किस्म की अकरबा परवरी हो जाती कि अच्छा सबको जो चीज पैसों से मिल रही है तुम ऐसे ही ले लो, क्यों तुम मेरे भाई हो। ठीक है, ये नहीं किया, पहले उनसे ले लिए, लेकिन फिर अपने पास से तोहफे के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे वही पैसे अपने मुलाजमों से कहा, जाओ इनके बैगों में रख दो। ये जो बिदात था उनका लफ्ज है ना, ये वही जो पीछे बिदा था, गोश्त का टुकड़ा, माले तिजारत पीछे पड़ा था ना, उन्होंने उसको माले तिजारत समझ कर छुपा दिया। तो वो हिस्सा जो फरोख्त करने के लिए अलग किया गया, इसको आप कह सकते हैं जैसे मर्चेंडाइज होती हैं, या कैश कह लीजिए, या वो सरमाया जो इन्वेस्ट किया जाए उसकी तरफ इशारा है। ये कैसे बिदा कैसे हो गया ये माल, नोट कीजिए लफ्जों का हुसन, ये माल देकर एक किस्म का यूसुफ इन्वेस्ट कर रहे थे भाइयों का दोबारा आना, समझ रहे, एहसान किया जा रहा था। क्यों वापस कर दिया, देखना चाहते थे कि अमानतदार हैं कि नहीं, और बाप चूंकि अमानतदार है तो वापस जरूर आएंगे। दूसरी वजह मुफसरीन कहते हैं कि इस वजह से कि कहीं दोबारा पैसे ना होने की वजह से ना आ सके। ठीक है, फिर एहसान भी कर रहे थे कि चलो इनके ऊपर एक एहसान कर दें। हमें इससे क्या मिलता है, इससे क्या पता चलता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे वो खुद से भी फैसला कर सकते थे। ये ख्याल यूसुफ के दिल में कैसे आया कि ये तरकीब इस्तेमाल करूं ताकि भाई वापस आए, बादशाह की तरफ से ये कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी। यहां से यूसुफ अलैहिस्सलाम का इनिशिएटिव होना भी साबित होता है। देखिए, बेहतरीन वर्कर वो होता है जो खुद इनिशिएटिव ले, लेकिन इनिशिएटिव लेना और बगैर मशवरे और अप्रूवल के काम कर देना ये बहुत बड़ी खयानत होती है। लेकिन आज भी आप देखिए कि जितनी अच्छी कंपनीज है ना, उस बंदे को हायर करती हैं जिसकी अपनी भी अकल काम करती हो। यानी अपने लफ्जों में कह ले कि यूसुफ ने अपनी अकल से सोच के फैसला किया। यहाँ से हमें भी एक छोटा सा सबक मिलता है कि अपने बच्चों की तरबियत, और ऑफ कोर्स अगर आप कहीं टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स की तरबियत कैसी करें कि उनको इनिशिएटिव लेना आए, बुद्धू ही ना पैदा हो जाए सारे। बाज़ लोग कभी अपने बच्चों पे ट्रस्ट नहीं करते, अपने जो मतलब समझे उनके साथी होते हैं उन पे ट्रस्ट नहीं करते, आखिरी वक्त तक चाबियों का गुच्छा अपने हाथ में रखते हैं चाहे संभाला भी ना जाए। जो लोग अपनी जिंदगी में अपने बच्चों और अपने छोटों को ट्रेनिंग दे देते हैं वो फिर अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बहुत सुख लेते हैं। जब हम दूसरों को उनकी अकल इस्तेमाल करने का, उनकी स्किल्स इस्तेमाल करने का मौका देते हैं तो गलतियां तो वो करेंगे, तो गलतियां करेंगे तो क्या होगा, आप उनके बैक पे हैं ना, कोई बात नहीं गलती है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। ये ज्यादा बेहतर होता है इसके कि आप लोगों को बिल्कुल ही डिपेंडेंट बगैर किसी अकल के छोड़ जाएं और आपके दुनिया से जाते या आपके मंजर से हटते ही लोग परेशान हो जाए कि अब हमने करना है क्या करना है। तो यहाँ से मोमिन की स्किल्स भी पता चलती हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि इस अमल में कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों के लिए ये काम जो किया, इससे ये भी पता चलता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को माल से कोई रग़बत नहीं थी, इस मुश्किल में भी वो माल को फ्री दे रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी। और ये जो सामान उनकी खुर्जियों में वापस रखा वो क्या था? कोई पैसे थे? नहीं। कहते कि उस दौर में पैसे तो होते ही नहीं थे, लोग चीजें बेचते थे, ट्रेडिंग करते थे, जैसे भेड़ बकरियों की ऊन होती थी, सूत हो सकता है, कहीं गल्ला था, कोई ऐसी चीज थी, तो मुलाजमीन को कहा कि वापस उनकी चीजों को दे दो। क्यों? अल्लाहुम यारिफू नहा, ताकि वो पहचाने इनको। इज़न क़लबू इला अहलिहिम, जब लौटें अपने अहलो याल की तरफ। ये सब क्यों कर रहा हूँ? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो दोबारा आए। बात वापस बुलाना चाहते थे, इसलिए ये सारा काम कर दिया। ठीक है, अब बात खत्म। एक और मंजर पलटता है। आप सोचे कि ड्रामा चल रहा है, अब स्टेज पे एक और सीन है। वो क्या है कि ये इस मुल्क से निकलकर वापस अपने शहर कनान पहुंच चुके। आयत 63, फलम रजउ इला अबीहिम, फिर जब वो लौटे अपने वालिद के पास तो कहने लगे, कालू या बाना मुनिया मिन्नल कैलू, देखे हमसे एक पैमाना रोक लिया गया। जरा अंदाज नोट फरमाइएगा, यूसुफ के एहसानात, यूसुफ का इनको इतना प्रोटोकॉल देना, जो अच्छी बातें यूसुफ ने इनके साथ की उसका तذकरा करने से पहले पहला जुमला बाप के सामने क्या बोलते हैं? मुनिया मिन्नल कैलू, हमसे तो जी अनाज रोक लिया गया। इसको कहते हैं शिकायती रवैया। ये है नेगेटिविटी, ये है वो सोच जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। देखिए, इंसान दो किस्म के होते हैं, हालात एक ही होते हैं लेकिन इंसान दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं जो हमेशा रोशन पहलू देखते हैं, और दूसरे होते हैं जो हमेशा तारीक पहलू देखते हैं। बस अगर कोई किसी को दिखाए, ग्लास है या बॉटल है ये, तो इसमें आधी बॉटल में पानी है, ऊपर से खाली है, और आपसे कोई पूछे ये बताइए कि ये बॉटल कैसी है, कुछ लोग बोलेंगे आधी बॉटल खाली है, क्योंकि उन्होंने ऊपर से देखा खाली को, नेगेटिविटी की सोच है। और कुछ कहते हैं कि आधी बोतल भरी हुई है। कौन सा सही बात कह रहा है? बात तो सच है दोनों की, लेकिन थॉट प्रोसेस किसका खूबसूरत है? इसको कहते हैं शुक्रगुजारी। बच्चियों को शादी करके भेज रहे हैं या किसी भी एंगल में, ये सोच सिखाइए कि जो है पहले उसका तस्करा करो। अफसोस की बात है कि हम सिस्टर्स अमूमन अपने घर वालों के साथ इसी तरह का जुल्म करते हैं, जो वो ले आते हैं उसका तस्करा नहीं, और एक जो चीज़ भूल जाते हैं उसका बड़ा तस्करा, और जो उन्होंने दिया है या हम पे लगाया है, जो मोहब्बत मिली वो तो मिलनी थी जी, मिलनी थी, हम नहीं आए इनके घर, और कोई एक कमी है तो कहते हैं हमारे अब्बा के घर में तो ये होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक औरत बरसों तक अपने माँ बाप के घर में रहती है, दिली रिश्ता नहीं आता, इंतजार में कि कोई अल्लाह का बंदा आए और रिश्ता हो, फिर अल्लाह किसी को भेज देता है और वो उसकी बीवी बन के उसके घर चली जाती है, और वहां जाके उसको कहती है कि मैंने तेरे घर में आके सुख नहीं पाया। ये बिल्कुल हदीस का खुलासा है, अल्फाज तो फर्क होंगे, यानी ना शुक्रबन होता है, यहाँ तो ये भी कमी, कुछ किए ही नहीं, किए ही नहीं। अपने आप से खुद पूछे हर एक, क्या मेरा अंदाज शिकायती तो नहीं है? और किसी को शिकायती बंदा अच्छा नहीं लगता। आपको अपने बच्चों की शिकायतें अच्छी लगती? एक बच्चा हर वक्त के, अम्मी आप तो ये करती नहीं, मेरी तो कभी बात ही नहीं सुनी, आप तो अच्छी अम्मी नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना दुख होगा। ये इनकी सरिश्त में थी। और यहाँ एक छोटा सा नोट लिख के साइड पे छोड़ दीजिए कि ये जो 12 भाई हैं ना, ये असल में बनी इसराइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्हीं 12 की नस्लों से तो 12 कबीले चले थे, जिनका तस्करा हम पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में। तो सोच जाती है, यूसुफ को अल्लाह ताला ने जो चुना है ना, वो खूबसूरती के लिए कोई नहीं चुना, उनके ऑप्टोमिस्टिक होने के लिए चुना है। तो बुरे हालात का तस्करा नहीं, उसमें उम्मीद की एक शम्मा को रोशन कर लें। अंदाज ही कुछ इस किस्म का इनका दिखता है। फरसिलमाना खाना, तो आइंदा हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए, नक्तल, ताकि हम इसके हिस्से का भी गल्ला ले आए, व इन्ना लहू लहाफिजून, और हम इसकी पूरी हिफाजत करेंगे। अब आपको प्रवोक कर रहे हैं, अभी देखे सामान को नहीं खोला, अभी आप देखेंगे सामान खोलेगा। सामान खोलने से पहले ही सारी बातें कर करा के बाप को भी तैयार कर रहे हैं कि देखे जी अगली दफा कोई नहीं मिलना, अगर हमें साथ ना भेजा हमारे साथ भाई को, तो आप इसको भेज दें और हम करेंगे इसकी हिफाजत। जरा हाईलाइट कीजिए क्लास, व इन्ना लहू लहाफिजून, और लिख रहे हैं किस मुंह से कह रहे हैं। याकूब के दिल ने बोला होगा ना कि अच्छा वैसी हिफाजत करोगे ना जो यूसुफ की कर चुके हो। हजरत याकूब का जुमला सुन लीजिए, I-64, काल हल आमनुकुम अलैही, तो क्या मैं इसके बारे में तुम पर एतबार करूं, इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अखीही मिन कबल, जैसे मैंने इसके भाई यूसुफ के बारे में तुम पर पहले एतबार किया था। ये जुमला तो है हकीकत की बुनियाद पे, इंसान को कभी ना कभी तो सुननी ही पड़ती है, ये याद रखें। आपका मुकाबला या आपका मामला कितने नाइस पर्सन से, कितने हम्बल, कितने आजिज से पड़ जाए, लेकिन याद रखिए 100 दिन चोर के, 1 दिन चाकर, यहाँ ये अमल की बात है। जो हकीकत है ना आपकी, वो खुलेगी एक दिन। इस दुनिया में जिस तरह सूरज को चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता ना, उसी तरह मैं असल में क्या हूँ ये दूसरों के सामने आने से कोई रोक नहीं सकता। इंसानों की एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, वो कहते हैं हम जो हैं ना वो ना दिखे, हूं मैं ऐसी आप ना बताइएगा, अच्छा सर मेरी तारीफें कीजिएगा अम्मी जी के सामने, और जरा लोगों को बताइएगा मैं कैसी हूं। आप जैसी जो है ना खुल के आएगी। कितने साल के बाद याकूब के मुंह से ये जुमला भाइयों को सुनना ही पड़ा। और याद रखिए, जब इंसान एक दफा कोई गलत काम कर चुका होता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस भी लूज हो चुका होता है। चाहे भाई इस वक्त बोल जिस लैंग्वेज से रहे, लेकिन वो जोश नहीं, वनाह नोस्बा, और खाएंगे और चरेंगे और चुगेंगे और पिएंगे, जिस शद्दोमद से यूसुफ को लेके गए थे आज नहीं वैसे जा रहे। इससे क्या पता चलता है कि इंसान गलत काम करता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और अल्लाह के साथ कॉन्फिडेंस के लूज होने का नाम ही तो ये है कि इंसान फिर उस काम को कर ही नहीं पाता, हिम्मत खत्म हो जाती है। लिहाजा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी और सच थी तो क्या बोलते, आगे से बात ही कोई नहीं कर सके। खैर, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा फल्लाहु खैरुन हाफिजा, वैसे तो अल्लाह ही बेहतरीन मुहाफिज है, वह हुआ रहमुर्रहीमीन, वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला। ये जुमला अगर हम हाईलाइट कर लेना, फल्लाहु खैरुन हाफिजा, तो ये जुमला याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ को भेजते हुए नहीं बोला था, बल्कि उनको क्या कहा था कि तुम इसका ख्याल रखना। अब चूंकि अल्लाह की हिफाजत में दे रहे हैं ना, तो बेहतर होगा। अच्छा, अब ये तो किसकी हिफाजत में दे रहे हैं, अल्लाह की। आजकल लोग किसकी हिफाजत में देते हैं, यानी मैं तुम्हें अल्लाह की जमानत में देता हूँ, आज किसको जामिन कहते हैं, इमाम जामिन को, नौजुबिल्ला, इससे बड़ा भी कोई शिर्क होगा। इमाम जामिन का नाम सुना होगा, बाजू में एक धागा बांध देते हैं कि अब तुम्हें ये इमाम जामिन बंद है, यानी अब नमाज नौज बिला फुला इमाम तुम्हारे जामिन है कि वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। खैर, ये बातें हुई बाप बेटों में।